अस्सौम ली व अना अजजी बिही। बताया नहीं क्या है? सदका करोगे तो इस सदके के बदले अगर एक दाना दोगे तो 700 दाने बन जाएंगे, रिवॉर्ड बता दिया है। अगर हज करोगे तो हज करने की वजह से अल्लाह ताला तुमको ऐसे गुनाहों से पाक कर देगा जैसे कि तुम अभी माँ के पेट से पैदा हुए। कमिंग ऑन दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। किसी ने मुझे कल ही शायद एक वीडियो भेजी थी, ये बिल्कुल सही वीडियो है, अगर किसी को इस पर कन्फ्यूजन हो तो समझ ले। जब हम ये कहते हैं कि हज करने से इंसान के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, तो बाज़ औक़ात इंसान ये समझता है कि मैंने जिन इंसानों का हक मारा है जिंदगी में, अगर मैंने हज कर लिया तो मैं शायद उस गुनाह से भी पाक हो जाऊंगा। जिसमें आपने, जिस भी अमल में आपने किसी इंसान को शामिल कर लिया, अब आपकी तौबा कबूल नहीं होगी चाहे आप जितने भी हज कर लें, जब तक कि जिसके साथ आपने ज्यादती की है आप उसका हक उसको लौटा ना दें और उससे माफी ना मांग लें। अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, अल्लाह किसी दूसरे इंसान पर जुल्म हो तो अल्लाह उसको कैसे जो है वो मजलूम बनाकर छोड़ सकता है? अल्लाह उसको तो इंसाफ दिलाएगा। तो आपका हज आपको ऐसे पाक करेगा कि जो भी गुनाह आपके और आपके रब के दरमियान था, मिसाल के तौर पर एक गुनाह था, आपने प्रॉपर पाकी हासिल नहीं की, आपने प्रॉपर वुजू नहीं किया, आपने प्रॉपर दो सजदे नहीं किए, आपने प्रॉपर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, दिस इज बिटवीन यू एंड योर अल्लाह, ये वाले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। या आपका कोई रोजा था, आप समझिए आपके 6 कजा हुए थे, आपने गर्मी की वजह से 6 की बजाय 5 रख लिए, 1 रह गया आपका, तो अगर ये इबादत है तो ये बिटवीन यू एंड योर अल्लाह है। हज करने से ये सब माफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैंने किसी इंसान के साथ ज्यादती की है, अगर मैंने किसी इंसान का हक मारा है, अगर मैंने उसका माल खाया है, अगर विरासत में मैंने डंडी मारी है, तो हज करने से मेरे फिर उस वक्त ये वाले गुनाह नहीं पाक होने वाले, इसकी मुझे कंपनसेशन करनी पड़ेगी। सही। तो रोजा एक ऐसी इबादत है, हज का मैंने आपको बताया था कि हज का रिवॉर्ड ये कहा जाता है कि इंसान को बिल्कुल गुनाहों से पाक कर दिया जाता है विद द एक्सेप्शन जो मैंने बता दी। इसी तरह रोजे के लिए आता है कि रोजे का रिवॉर्ड असौमुली व अना अजजी बिही, अल्लाह ने बताया नहीं। इसी तरह से एक और अमल है जिसकी बहुत एनकरेजमेंट है इंसानों को, और बाज़ों का जब हम पढ़े लिखे इंसान दीन की तरफ आते हैं तो हम दीन की खूबसूरती को समझ नहीं पाते, मैं खासतौर पर पढ़े लिखे इंसान कह रही हूँ, इसलिए कि आपकी और मेरे लिए लोगों को माफ करना मुश्किल होता है। सूरह शोरा की आयत नंबर 40 में आता है, फमन अफा व असलहा, तो जिसने माफी मांगी और व असलहा अपनी इसलाह कर ली, फअज्रुहु अलल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे। ये आयत असल में कंटिन्यूएशन है उस कॉन्टेक्स्ट की जिसमें आता है कि बुराई का बदला बराबर लिया जा सकता है, लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। ये उसी आयत की, सूरह शोरा आयत 40 की कंटिन्यूएशन है, और उसमें आगे फिर आता है, फमन अफा, तो जिसने अपने भाई को माफ कर दिया, वह असलहा, और सुलह भी कर ली। यानी क्या मतलब है? बाज़ औक़ात हम लोगों को माफ कर देते हैं, हम कहते हैं मैंने माफ कर दिया, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती, ऐसे कहते हैं ना। इसका मतलब है आपने पार्ट वन किया है, आपने फमन अफा तो कर लिया, माफ तो कर दिया, वह असलहा नहीं हुआ, सुलह नहीं किया आपने। जिसने माफ कर दिया और फिर उसके बाद वो दूर दूर से माफ नहीं कर रहा, बल्कि उसने अपनी तरफ से कोशिश करके अपने मामले को बेहतर कर लिया, तो अल्लाह ने कहा फा अजरुहु अलल्लाह। अजर क्या है ये बताया नहीं, अल्लाह ने कहा बस उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अब वो जब जन्नत में अल्लाह के सामने आएगा तो अल्लाह उसका रिवॉर्ड उसको क्या देगा? बाग होगा, महल होंगे, नहरें होंगी, नहरों के ऊपर जो है वो मजीद पहाड़ होंगे, चश्मे होंगे, क्या होंगे अल्लाह ने कुछ नहीं बताया। बिल्कुल इसी तरह से औरतें जब भी कुरान में मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से हूरों के रिवॉर्ड का पढ़ें या उन रिवॉर्ड्स का पढ़ें जो स्पेसिफिकली आपको मर्दों के साथ अटैच होते हुए मिलते हैं, तब अपने जहन में इसी आयत को ऐसे कर लिया कीजिए, फअजरुहा अलल्लाह। औरत का अजर किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह खुद जो है वो हया वाला है, अल्लाह औरत की हया भी जानता है, तो अल्लाह ताला ने एक्सपोज नहीं किया कि औरत को क्या मिलेगा, ये अल्लाह ताला ने रख दिया है। हाँ, जो मर्दों को हूरे मिलेंगी उनकी एक सिफत आती है, बहुत सी सिफात में से, व इंदहुम कासिरातु तर्फ ऐन, सूरह साफात आयत नंबर 48, व इंदहुम, और जन्नती मर्दों के पास, कासिरातु तर्फ, ऐसी औरतें होंगी, आयुन, जिनकी आंखें जो है वो हर वक्त झुकी रहेंगी। आप अपने शोहर की बीवी हैं ना, आप चाहती हैं कि, बाज औरतें कहती हैं अल्लाह ना करे आपको हूर मिले, मैं हूं ना, आपको क्या मुश्किल आई हुई है, मतलब दुनिया में भी आपने अपने सर के ऊपर जो है वो एक बिठाया हुआ है, और अब आप जन्नत में जाके भी चाह रही हैं कि मेरे मोजे कहाँ हैं, टावल उठा के मैं दोबारा वॉशरूम में लेके जा रही हूँ, शर्ट ये वाली नहीं पहननी थी, दूसरी पहननी थी, मेरी कार की चाबी मैंने तो यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, मेरा चश्मा कहाँ है, रीडिंग ग्लासेस मिल नहीं रहे। आप चाहती हैं जन्नत में भी आप यही करती रहे? नहीं, मजाक कर रही हूँ। अल्लाह हमारे शोहरों को रिफाइंड, ये दुआ किया करें, अल्लाह हमारे शोहरों को बेस्ट रिफाइंड फॉर्म में हमें जन्नत में अता करें। रिफाइंड फॉर्म कहेंगी ना तो बस फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके ऊपर जो है बड़ी अच्छी जो है वो पॉलिशिंग करेंगे फिर। लेकिन जो मैं बात यहाँ मेंशन करना चाह रही हूँ, मर्दों को क्या चीज़ अच्छी लगती है, अल्लाह ने वही चीज़ जन्नत की रिवॉर्ड और नेमत के तौर पर डिस्क्राइब की। अल्लाह ने जिस हूर की क्वालिटी को कई मरतबा जन्नत में मर्दों के लिए इंसेंटिव बनाया है, अगर वो हम औरतें समझ के पढ़ें तो हम अपने घरों को जन्नत बना सकते हैं। अल्लाह ने मर्दों की फितरत बताई, मर्द को वो औरत अच्छी लगती है जो शर्मीली होती है। मर्द से मतलब शौहर। आप सब जितनी भी शादीशुदा खवातीन हैं, शादी की पहली रात, खैर अब तो शायद नहीं होता होगा ऐसे, आई डोंट नो, पहले तो होता था ऐसे, आंखें नहीं उठती ना इंसान की अगर अच्छा चलें। आप पहली रात छोड़ दें, ज्यादा ही कुछ एक्सप्लिसिट हो जाएगा, पहली रात छोड़ दें, पहला दिन, पहला महीना, इंसान बोलते हुए थोड़ा हेसिटेंट होता है ना। अगर आपकी पहले से सलाम दुआ और कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप पर नहीं चल रही थी, और आपके साथ बिल्कुल एक नया बंदा, अजनबी बंदा, जिसको माँ बाप ने बस पसंद करवा के आपके साथ उसका निकाह कर दिया, तो एक नेचुरल हेसिटेशन और एक नेचुरल हया इंसान के अंदर होती है। आप अपने आप को इमेजिन करें जो उस वक्त आप थी जब आपकी शादी हुई थी, आप अपने शोहर को देखते थे, आपके शोहर आपको देखते थे, और सिवाय स्माइल के और कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आता था। अगर आप सारी जिंदगी ऐसी रहें, अगर आप सारी जिंदगी ऐसी रहें तो आपके शोहर यकीनन अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करें कि अल्लाह जन्नत में मुझे भेज और इसी औरत को मेरा साथी बना दे। तो अपने शोहरों के लिए अपने घरों की जन्नत बन जाएं। अल्लाह ताला ने बहरहाल एक कन्विक्शन के साथ क्वालिटी बताई है मुख्तलिफ एक्टिविटीज के दरमियान में रिलैक्सेशन के साथ, कि अल्लाह के बंदे जन्नत में कैसे एंजॉय करेंगे, और अल्लाह की जन्नत में जाने की तैयारी करें, आपके और मेरे लिए भी वहां बड़ा सामान है, आप और मैं जो चाहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह देगा। फिर आयत नंबर 57 में जो फाकिहा का जिक्र आया है, लहुम फीहा फाकिहातुन वलहुम मा यद्दऊन, उनके लिए वहां पर हर तरह के फल होंगे। फाकिहातुन नकरा आया है, अल फाकिहा नहीं आया, फाकिहातुन नकरा आया है। तो बास स्कॉलर्स कहते हैं कि इस आप आपको मालूम है ना कि जब नकेरा इसम आता है तो उसका तर्जुमा करते हैं किताबुन कोई किताब, रसूलुन एक रसूल, शईउन कोई चीज, तो इस तरह से उर्दू के हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, फाकिहातुन कोई फल। तब इसमें बास स्कॉलर्स ने ये कहा कि मुमकिन है कि कोई सरप्राइज फल है जिसका जिक्र यहाँ किया गया है, इसलिए कि यहाँ पर अल फाकिहा नहीं आया है, कि अल्लाह ताला तुमको एक स्पेसिफिक फल खिलाएगा वो जिनसे तुम्हारी फेमिलैरिटी दुनिया की होगी। यहाँ जन्नत की जिन नेमतों का जिक्र आ रहा है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलैक्सेशन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुगल में अच्छे अपने स्पाउसेस के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, तो ऐन मुमकिन है कि फाकिहातुन का नकरा एक खास किस्म के सरप्राइज फल के लिए हो जिसको खाते साथ चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। वल्लाहु आलम। इब्ने आशूर के मुताबिक जन्नत के फल पेट भरने के लिए नहीं होंगे, बिल्कुल जैसे दुनिया के फल आप पेट भरने के लिए तो नहीं खाती ना, आप ये तो नहीं कहती आपसे मैं पूछूं आपने आज लंच में क्या खाया, तो आज का मतलब आज नहीं, मुझे पता आपका रोजा है, मैं आपसे पूछूं आपने लंच में क्या खाया, तो आपके आज मैंने खुबानी खाई, लंच में खुबानी बस। तो जिस तरह दुनिया में आप एज अ एपिटाइजर फ्रूट्स खा रहे होते हैं, जन्नत में भी इब्ने आशूर के मुताबिक अभी जो ये सारी नेमतों का जिक्र हो रहा है, ये जो अब अल्लाह ताला ने फाकिहातुन की शक्ल में डाइट जन्नत की बताई है, ये जन्नत के अभी मेन कोर्स नहीं है, ये तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो है वो लज्जत के लिए, इट्स अ लग्जरी आइटम ना, फ्रूट इज कंसिडर्ड अ लग्जरी आइटम, सो जन्नत का भी लग्जरी आइटम है। अल्लाह ताला ने सिर्फ यहाँ पर अभी लग्जरी आइटम को लज्जत के लिए, जन्नतियों के लिए जो है डिस्क्राइब किया है। जन्नत में जो भी खाने होंगे वो एनर्जी गेन करने के लिए नहीं होंगे, जन्नत में जब किसी को कमजोरी ही नहीं होगी तो फिर एनर्जी गेन करने के लिए खाने खाने की क्या जरूरत होगी। जन्नत में सिर्फ इंसान जुबान की लज्जत तक के लिए खाना खाएगा, और बाज अहादीस में आता है कि जन्नत में इंसानों का डाइजेशन सिस्टम वैसा नहीं होगा जैसा कि यहाँ दुनिया में है, इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आखिरी आयात के अंदर कि अल्लाह ताला जब इंसानों को दोबारा उठाएगा, इट विल बी खल्कन जदीद वो एक नई एक अलग तरह की क्रिएशन होगी जो अल्लाह दोबारा उठाएगा। तो अब यहां पर आपको एक पूरा सीन मिल रहा है जन्नत का बेहतरीन, जिसमें जन्नती अहले जन्नत लाइक माइंडेड लोगों के दरमियान में होंगे, उनको वहां पर अल्लाह ताला बेहतरीन बेड्स रिक्लाइनर्स काउचेस जो है वो तोहफे के तौर पर देगा, अल्लाह ताला उनको वहां स्पाउसेस देगा और खाने के लिए उनको वहां फल मिलेंगे। और फल मिलेंगे तो आप जब अपना फल खा रही होंगी तो आपकी चेरी आपके बेडशीट पर गिरेगी तो स्टेन भी नहीं आएगा, अनार आपके बेड पर गिरेगा तो स्टेन भी नहीं आएगा, और अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप आम को क्यूब्स के बगैर ऐसे ही चूस चूस के खाएं तो वो जो आपके कोनियों तक जूस भरा होगा आप वहीं बेड पे बैठे बैठे हाथ साफ कर दीजिएगा, बेड गंदा भी नहीं होगा। थिंक अबाउट जन्ना, यू विल बी हैप्पी, यू विल गेन एनर्जी इंशाल्लाह इन दुनिया टू डू राइचियस डीड्स। ये हकीकत है, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत जन्नत का जो है वो तस्वीर और तसव्वुर दिया है कि आप सोचते रह जाते हैं। वाला हुम्मा यद्दा उन, जो वहां ऑर्डर किया जाएगा वो आपको मिल जाएगा, इसलिए कि मेहमान नवाजी करने वाला कौन है, रब रहीम है वहां पे, अर रहमान है मेहमान नवाजी करने वाला। इंसान जो मांगेगा जो ख्वाहिश करेगा वो दे दिया जाएगा जन्नत में, देर इज नो तकल्लुफ, नो तकल्लुफ। बाज़ों का आप कहीं जाते हैं आपको चीज किसी के घर में बहुत पसंद आती है, एक कबाब दूसरा कबाब, आप कहते हैं अल्लाह तीसरा भी उठाऊं अब ना उठाऊं, भूख तो बहुत जोर की लग रही है। जन्नत में कोई तकल्लुफ नहीं होगा, अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब खिलाएगा, बंदा मांगेगा और अल्लाह देता जाएगा। इमाम अत-तबरी कहते हैं ये जो मा यद्दाउन आया है आयत नंबर 57 में, इसका एक मतलब ये भी है मा यतमन्नून, जिसकी भी वो तमन्ना करेंगे। तलब करने में तो आपको मुंह से एफर्ट करनी पड़ती है ना, बोलना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है। इमाम तबरी कहते हैं कि असल में इस मा यद्दाउन के अंदर मा यतमन्नून के मफहूम को छुपाया गया है कि अभी वो सोचेंगे और उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाएगा। इस मा यतमन्नून के अंदर इमाम तबरी ने एक और एंगल अहदीस के हवाले से बहुत खूबसूरत कनेक्ट किया है सूरत यासीन की आयत नंबर 57 के साथ। वो कहते हैं कि हमें अहदीस बताती हैं कि अगर वालिदैन या औलाद में से कोई जन्नत के आला दर्जे में होगा, यानी माँ बाप समझे आला दर्जों में है, औलाद लोअर दर्जों में है, तो अगर माँ बाप जो आला दर्जों में हैं वो तमन्ना करेंगे कि उनकी औलाद भी हायर मुकामात पर हायर दर्जात में आ जाए तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। माँ यतमन्ना ऊन के अंदर और माँ यद्दा ऊन के अंदर ये मफहूम भी आता है, लेकिन इस सिनेरियो में माँ बाप और औलाद दोनों का जन्नत में होना जरूरी है, दोजख से निकाल कर जन्नत में नहीं लाया जाएगा, वो तो अपनी सजा पूरी करेंगे। मुसलमान अपनी सजा पूरी करेंगे यहां तक कि उनके गुनाहों की सजा का मामला जो है वो कंपनसेट कर दिया जाएगा, अल्लाह अपनी रहमत से फिर उसके बाद जिस जहन्नमी को जहन्नम से निकालना चाहेगा फिर उसको निकालेगा। वो मैं बात आपसे तफसील से पहले कर चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह ने यहाँ जो जन्नतियों की डाइट का जिक्र किया है, हर डाइट आपको मिलेगी। बस बच्चों को मास्टर शेफ देखने का बड़ा शौक होता है, खवातीन को भी होता है, ऑस्ट्रेलिया का मास्टर शेफ जो आता है, और फिर उसको देख देख के बहुत सी डिशेस भी बनाती हैं। अब वो जैसे उनकी बनती है कभी भी आपका प्लेटर वैसा नहीं बनता। तो जन्नत में आप एक काम कीजिए, आप अभी से ना एक मास्टर शेफ की लिस्ट बना लीजिए, आप भूल जाएंगे, कब्र में साथ तो नहीं लेके जाएंगे ना, लेकिन आपकी विश लिस्ट थी तो क्या होगा, अल्लाह जन्नत में आपकी विश लिस्ट वहां आपको थमा देगा। अल्लाह कहेगा ये तुम्हारी मास्टर शेफ की पूरे किचन की विश लिस्ट थी ना, अब बस तुम जब तमन्ना करोगे एक प्लेटर तुम्हारे सामने आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही आएगा। इन तमाम नेमतों के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ द नेमत, ला शैअ फौका हाजा, अब जिस नेमत का जिक्र किया जा रहा है अरबी में कहते हैं ला शैअ फौका हाजा, कोई चीज है ही नहीं इसके ऊपर। ला शैअ वही कॉन्सेप्ट है जैसे ला रईबा, ला इलाहा, ला शरीका, ला गालिबा। तो अब जो आयत आ रही है जिसमें जन्नतियों का अल्टीमेट रिवॉर्ड बताया जा रहा है, मुफस्सरीन कहते हैं इस नेमत से आगे कोई नेमत ही नहीं है। ला शय अफौका हाजा, वो क्या है, आयत 58, सलामुन कौलम मिन रब रहीम। इन जन्नतियों को ग्रीट करने वाला कौन होगा, रहमान रब होगा, रहीम रब होगा, और ग्रीटिंग भी कैसी होगी, इतनी खूबसूरत इस आयत के अंदर मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने एक्सप्लेनेशंस की हैं। वो कहते हैं ग्रीटिंग भी कैसी होगी, इट्स नॉट लाइक अस्सलाम वालेकुम, इट्स नॉट लाइक दिस। आप सलाम करती हैं, जब आप किसी को सलाम करती हैं आप कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको मना किया जाता है ना, सलाम अलैकुम नहीं कहिए, सलाम अलैकुम नहीं कहिए। सलाम कैसे करते हैं मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम अलैकुम भी नहीं होता। बाज़ लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं छाम करो छाम, देर इज नथिंग लाइक दिस इन इस्लाम, प्रॉपर सलाम किया करें। और मत घबराएं कि आप किस गैदरिंग में हैं, अगर मैं किसी कॉर्पोरेट डिनर में हूँ तो मैं अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकती, समझेंगे मदरसे से सीधी आ रही हैं, यहीं लैंड किया मदरसे से। सो वॉट अगर मदरसे से लैंड किया तो किस बात की एम्बेरसमेंट है? सलाम किया जाता है अस्सलाम वालेकुम, और अस्सलाम का मतलब है आप शुरू में एक हमजा लाम लगा रही हैं। अब तो आप लोगों को इतनी समझ आ गई ना, प्रॉपर नाउन सलाम उन नहीं कहते हम ये नहीं कहते सलाम उन अलैकुम, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब है अस्सलाम पर आप हमजा और लाम मारिफा का लगाती हैं। यहां पर क्या आया है? सलामुन, इट विल बी एनी सलाम। और ये अल्लाह कैसे जन्नतियों को ग्रीट करेगा ये भी नहीं बताया गया, इट्स अ सरप्राइज अगैन। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह कैसे अपने बंदों को सलाम करेगा, कोई ग्रीटिंग होगी। अल्लाह हमें इस काबिल बनाए कि हम इस ग्रीटिंग के अहल हो सकें। अल्लाह हमें जन्नतियों में शामिल फरमाए जिनको अल्लाह का दीदार जो है वो नसीब हो सके। ऐसा सलाम होगा, मुफस्सरीन कहते हैं, जैसा सलाम इंसानों ने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जाहिर है अल्लाह करेगा तो अनयूजुअली होगा, बिल्कुल अनमैच्ड होगा। सलामुन कौलन, इसको कहते हैं अरबी जुबान में नसब अलत ताज्जुब। जिनको अरबी आती है उनको समझ आ जाएगा, और जिनको नहीं आती वो कहेंगे कौन सी फ्रेंच बोली। कोई बात नहीं, जिसको शौक है वो अरबी बोलना सीख ले, या अरबी कम से कम कुरान की अरबी सीखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको कुरान पढ़ने का मजा आएगा। यहाँ पर जो सलामुन के बाद कौलन आया है ये हालत नसब में है, और इसको कहते हैं नसब अलत ताज्जुब। ये ताज्जुब के लिए आया, यानी इसका एक एहतमाम है कि कैसा कौल होगा वो कोई भी नहीं जानता, वो वही जानेंगे जिनको अल्लाह ताला जन्नत में अपना दीदार और अपना जो है वो सलाम के काबिल बना देंगे। अल्लाह के लिए, अल्लाह का दीदार जन्नतियों के लिए बेहतरीन नेमत होगी। अहादीस में आता है कि जब अल्लाह ताला अपना वेल हटाएंगे, जब अल्लाह ताला अपना हिजाब हटाएंगे और जन्नती अल्लाह ताला को देखना शुरू करेंगे तो कितना अरसा गुजर जाएगा जन्नती अपनी नजरें अल्लाह से हटा ना सकेंगे। आउट ऑफ इतनी नेमतें आप सोचें, जहां शुगल है, जहां फाकिया है, जहां अराइक है, जहां पर जौज हैं, और जहां पर इतने मजे मजे के खाने हैं, हर तरह की मायदा उनकी कैटेगरी है, उन सब के ऊपर टॉप ऑन डैट जब अल्लाह का दीदार इन जन्नतियों का होगा, वो कई सालों तक, कई अरसे तक सिर्फ अल्लाह ही को देखते रहेंगे। दे विल फॉरगेट अबाउट द शुगल ऑफ जन्ना, वो जन्नत को भूल जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें इन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए। अब तक हमने जो भी यहां पर सूरत में देखा, जो आपको यहां जन्नत की नेमतें मिल रही हैं, पीछे सूरत में अगर आप देखें किन कैटेगरीज को अल्लाह ताला ने मेंशन किया कि जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत का अहल बनाया, एक अल्लाह के रसूल, हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको वो मुकाम दिया कि वो आखिरत में जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, दूसरे तमाम रसूलों के अपने अपने वक्त के फॉलोअर्स, और आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब हर इंसान को अपने अपने रसूल को नहीं मानना, बल्कि अब अल्टीमेट अथॉरिटी रसूल अल्लाह की है। तो कोई क्रिश्चियन आज ये नहीं कह सकता कि हम ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाते हैं तो हम क्यों नहीं जन्नत में जा सकते। उनका ईमान इनकम्प्लीट होगा जब तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी लाई हुई तालीमात पर अमल नहीं करेंगे। तो अब यहां पर ये जो आपको सिनेरियो नजर आ रहा है, अब तक का फ्लो सूरत यासीन का, आपको रसूल मिलते हैं जिनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, आपको रसूलों के फॉलोअर्स मिलते हैं अपने अपने टाइम के जिनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और एक रजुल आया था जिसे कहा गया था क़िलद खुलिल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जाओ। रसूल हों, रसूलों के फॉलोअर्स हों, या जिस वक्त ये मक्की सूरत नाजिल हुई उस वक्त के सहाबा हों, या वो रजुल हो, आपको क्या लगता है इन सब की जिंदगियों में जिंदगियां आसान थी और बस फ्लो करते हुए नेकियां कर रहे थे, या बड़ी टफ लाइफ फेस कर रहे थे? इन्होंने बड़ी टफ लाइफ फेस की थी, कुर्बानियां, मेहनतें, तंज, ताने, नाराजगियां, अपने माशरे में आउटकास्ट हो जाना, अपनी फैमिली में ऑड वन आउट बन जाना, रसूलों के पीछे चलते हुए कभी कभी बिल्कुल तन्हा हो जाना, कभी कभी मार खाना, कभी कभी वर्बल परसिक्यूशन को बर्दाश्त करना, कभी फाइनेंशियल क्रंच को बर्दाश्त करना, ये सारी मुश्किलात थी, लेकिन ये अपने कदम सिराते मुस्तकीम से हटा ना सके, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आखिरत में इनके लिए जन्नत के ये रिवॉर्ड लिखे हैं। तो अपने आप को अल्लाह के रास्ते पे लगाएं, चाहे आप अकेले हों, मत घबराएं, आखिर का रिवॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। भूल जाएंगी आप सब, जब जन्नतियों को जिन्होंने दुनिया में शदीद आजमाइशें देखी होंगी, अहादीस में आता है वो जिनकी जिंदगियों में एक के बाद एक इब्तला आई होगी, एक के बाद एक तंगी और परेशानी और मुश्किल आई होगी, एक के बाद एक गम आया होगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में एक डुबकी देंगे। बस एक डिप करके बाहर निकालेंगे। और फिर उनसे पूछा जाएगा, बताओ दुनिया की जिंदगी, अब तक की जिंदगी में कितना गम बर्दाश्त किया? वो कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमने आज तक कभी जिंदगी में गम नहीं देखा। जस्ट वन डिप इन जन्ना। और दुनियादार लोगों को, दुनिया परस्त लोगों को, हुब्बुद दुनिया का शिकार लोगों को, दुनिया के पीछे भागने वाले लोग, अपनी औलादों को सिर्फ मनी मेकिंग बनाने वाले लोग, अपनी औलादों के लिए सिर्फ लंबे लंबे खाते वसीयत करके जाने वाले लोगों के लिए उनको एक जहन्नुम का डिप दिया जाएगा। वो जो दुनिया में खाते पीते थे, बहुत फ्लरिश करते थे, बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड था, बड़ा ग्लैमर था, बहुत फेम था, एक डिप दिया जाएगा जहन्नुम का। और फिर पूछा जाएगा, बताओ जिंदगी में कितना ऐश और आराम देखा? वो कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमने जिंदगी में कभी कोई ऐश और आराम एक्सपीरियंस नहीं किया। मत अल्लाह की नाफरमानियों में दुनिया के मज़ों के पीछे भागें। अगर अल्लाह की फरमाबरदारी में दुनिया के मज़े मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की नाफरमानी हो और फिर मेरे ऊपर दुनिया बरसे, इससे बड़ा मेरे लिए डरने का मुकाम कोई नहीं है। उलमा की नज़र में ये सबसे दराज रस्सी है इस्तदराज की, ढील की, कि इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह के गुनाह या अल्लाह की शरीयत के बताए हुए कबीरा गुनाह हो और उसके ऊपर रिस्क बरस रहा हो, तो उस इंसान को 10 दफ़ा दिन में सोचने की ज़रूरत है कि मुझे ढील तो नहीं मिली हुई, ताकि वो अपने आप को सीधा कर ले। जितने अल्लाह के बंदे थे उनको हिदायत के रास्ते में आसानियाँ मिली या नहीं मिली, उन्होंने हिदायत का रास्ता नहीं छोड़ा। और अल्लाह ताला ने कहा है अपनी, मेरे ख्याल सूरत नहल में आता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नाहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में जिहाद करते हैं अल्लाह उनके लिए आसानियाँ कर देता है। और याद रखें, जन्नत की आसानी से बढ़कर कोई आसानी नहीं होगी। हर दिन आपको कोई ना कोई, किसी ना किसी घर से किसी ना किसी डेथ की खबर मिली जाती है। आसपास दूर कहीं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर किसी ना किसी के इंतकाल की खबर मिल जाती है। बस ये चंद दिनों की दुनिया की मेहनत है। अगर आपने इस मेहनत के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को और अल्लाह की इज़्ज़त और रज़ा को शामिल कर लिया, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए दुनिया के अंदर भी आसानी करेगा। अल्लाह की सपोर्ट अपने बंदों के साथ कॉन्स्टेंट होती है। जैसे फरिश्ते सहाबा की मदद के लिए उतरे थे, आज भी फरिश्ते उतरते हैं, और ईमान रखें कि आपकी मदद के लिए भी उतरेंगे। और आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे वाकयात होते होंगे कि आपको लगता होगा कि फरिश्ता ही था जिसने बचा लिया, अल्लाह की रहमत ही जिसने बचा लिया, वरना तो बिल्कुल मामला ख़त्म था। बाज़ औक़ात बच्चे माओ के सामने ऐसे गिरते हैं कि माओ को लगता है कि बस अब तो इतना सर फटेगा कि स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे, और बच्चा चल के दौड़ना शुरू कर देता है। तो फरिश्ता हिफाजत करता है, अल्लाह हिफाजत करता है। बस अपने अंदर साबित कदमी की हिम्मत लेकर आइए। आपकी ज़िंदगी की आजमाइशें आपको अल्लाह की फरमाबरदारी से दूर ना करें। अल्लाह ताला हमें कॉन्स्टेंटली अपना तस्किया करने वाला, अल्लाह कॉन्स्टेंट हमें गुनाहों पर माफ़ी मांगने वाला, और अल्लाह कॉन्स्टेंट हमें अपने रास्ते में सिराते मुस्तकीम पर दौड़ने वाला बना कर रखे। जो इस तरह के लोग होते हैं, इन्हीं के गुनाहों को अल्लाह जो है वो ओवरलुक कर देगा क़यामत के दिन। कॉन्स्टेंट अल्लाह के रास्ते पर दौड़ने वालों के गुनाह ईजी ऑडिट से गुजार दिए जाएंगे। अल्लाह एक एक अमल पर हाथ रख के नहीं पूछेगा, बताओ ये गुनाह क्यों किया था। अब आगे जो सीन आपको मिल रहा है, अब दोबारा से बात जा रही है मुजरमीन की तरफ। आपको कहा था ना क्रिमिनल्स का सीन पॉज हो रहा है, अब आगे से आयत नंबर 59 से आप देखेंगे कि दोबारा से सीन चेंज किया जा रहा है, और सीन चेंज करके क्रिमिनल्स की तरफ, वो जिनके लिए कहा गया था कि आज किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, वला तुजज़ऊना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, पर दोबारा बात को ले जाया जा रहा है। आप अगर कुफार और क्रिमिनल्स के बारे में सोचें और याद करें, तो हमने पिछली क्लास में कल बात की थी कि ये वो लोग होंगे जब सूर फूंका जाएगा और एक पैनिक सिचुएशन में उठेंगे, तो इनको सब याद आ जाएगा कि हाँ रसूल आए थे, हाँ उन्होंने इस साआ का वादा किया था, हाँ हम उनसे सवाल करते थे कि बताओ कब ये वादा पूरा होगा, इन कुंता सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम बताओ। उनको ये सब बातें याद आ रही हैं, और उसके साथ साथ अब इनके ऊपर एक और जो है वो हथौड़ा बरसाया जाएगा। परेशान है, या वही लाना कहा था ना, हाय इससे बड़ी मुश्किल तो हम पर आ नहीं सकती, और भाग रहे हैं नेकेड और बेयर फुटेड अल्लाह की तरफ। रोजे मैशर की सख्तियां नजर आ रही हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, और भाग रहे हैं अपने रब की तरफ। और ऐसे में इन पर इनसे कहा जाएगा आयत 59, जो कि अब तक दुनिया में इनको नहीं कहा गया था, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। कितने भी मुशरिक थे, کتنے بھی کافر تھے، کتنے بھی مستہزئین تھے، کتنے بھی رسولوں کو ٹارچر کرنے والے تھے، کتنے ہی نیک لوگوں کو مرڈر کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو ایوہ المجرمون نہیں کہا تھا. آخرت میں سب حساب کتاب برابر ہوں گے. مالک یوم الدین ہے، اس کی رحمت سے ناجائز فائدہ مت اٹھانا، دھوکے میں مت رہ جانا کہ دنیا میں اتنی رحمت ہوتی ہے، میں جھوٹ بولتی ہوں کوئی اوپر سے تھنڈر بال نہیں آتی، میں غیبت کرتی ہوں کوئی زمین نہیں پھٹتی، میں کسی کا حق مار کے کھا جاتی ہوں سب ٹھیک چلتا رہتا ہے، میں کوئی بیمار نہیں پڑتی، کوئی میرے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ میں پرابلم نہیں آتی. وہ دنیا تھی، دنیا ہے ابتلا کی جگہ، آخرت ہے جزا کی جگہ. جو جو دنیا میں جس جس نے زیادتی کی ہوگی، ہم پیچھے پڑ آئے، اللہ ایک ایک عمل کی اب جزا دے گا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب ان کی ریالٹی کے تھرو ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، کرمنلز، مجرموں، اپنے آپ کو الگ کر لو. جنہوں نے رسولوں کے ساتھ جرم کیا، جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، جنہوں نے رسولوں کے فالوورز کے خلاف جو ہیں وہ پرسیکیوشن کے معاملے کیے، سب الگ ہو جاؤ. آپ سوچیں کہ جس وقت آٹومیٹک ایک مصیبت انسان پر ہو، ایک اور مصیبت آ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا آہستہ آہستہ ہر طرح کا کول لوز ہونے لگ جاتا ہے. یہ آلریڈی پریشان تھے، ان کو آلریڈی لگ رہا تھا کہ قبر سے اٹھ کر نکلنا اور ایک ٹارگٹ کی طرف دوڑنا سب سے بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. اور اب یہ کیا ان کو کہا جا رہا ہے؟ الگ ہو جاؤ، ڈیفرنشیشن کیا جا رہا ہے. یعنی کیا کیا جائے گا؟ امام الطبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی مجرم لوگ ہوں گے جن کے خاندان کے لوگوں نے دین قبول کیا. وخشی الرحمن بالغیب، یاد ہے، وہ لوگ بھی تھے جو انہی لوگوں میں رہتے تھے، ڈرتے ڈرتے گرتے پڑتے اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. جب یہ مجرم اس دن ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو دنیا میں یہ بے وقوف سمجھا کرتے تھے، جن کو دنیا میں یہ ایکسٹریمسٹ سمجھا کرتے تھے، جن کو دنیا میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کو دیکھو دنیا کی فکر ہی نہیں ہے، بس دین کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، وہ کیٹیگری کو دیکھیں گے جو کیٹیگری خشی الرحمن بالغیب کی تھی. اور جب ان کو کہا جائے گا کہ اپنا راستہ ان سے علیحدہ کر لو، تو آپ دیکھیں کیا مینٹل ٹارچر ہوگا. جن کو ہم دنیا میں بے وقوف سمجھتے تھے، جن کو ہم دنیا کے اندر اپنے سے ڈاؤن ٹراڈن سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہائیلی ایلیویٹ کر رہا ہے اور ان کو مجرم کہہ کر ایک طرف کرنے کی بات کر رہا ہے. تو مفسرین کے مطابق ومتاز الیوم ایوہ المجرمون کے اندر ان مجرمین کے مینٹل ٹراما میں اضافہ کیا جائے گا، ان کی حسرت میں اضافہ کر دیا جائے گا، ان کی تکلیف میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو اس میں آپ کی اور میرے لیے پھر وہی سبق ہے، دنیا میں اگر تنہا بھی ہیں اللہ کے راستے پر تو مت ڈریں، آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اصحاب الجنتی کی جو کمپنی ہے وہ ملے گی. اگر دنیا میں آپ اور میں اس وقت اس طرح سے سپورٹ خاندانوں کی نہیں حاصل کر پا رہے جس طرح سے سپورٹ ملے تو انسان نیکیوں میں دوڑنے لگ جائے، کوئی بات نہیں، یہی وقت ہے اپنے مشکل ترین سرکمسٹانسز میں نیکی کر کے نیکی کا اجر 100 times بڑھانے کا. جس وقت شیئرز کم قیمت کے ہوتے ہیں اس وقت خرید لیے جائیں تو عقل مندی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسانوں کو، بزنس مین کو پتا ہوتا ہے کہ کل ان کی پرائز بڑھ جائے گی تو مجھے فائدہ ہوگا. اس وقت اسلام کا شیئر گرا ہوا ہے، کون ہے جو آگے بڑھ کر اسلام کو تھام لے؟ کون ہے جو اسلام کا شیئر خرید لے؟ کون ہے جو ایک اچھا بزنس کر لے؟ کون ہے جو اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو کمانے کی فکر اپنے زندہ ہوتے ہوئے کر لے، بجائے اس کے کہ آخرت کے بعد جب اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا، قبروں سے جب نکالا جائے گا، اس وقت ریئلائزیشن آئے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دیتا تو میں ایک اور موقع استعمال کر لیتا. یہ جو امتازو آیا ہے یہ تمیز سے ہے، امتازو ٹو ڈسٹنگوش. اہل جنت کے ساتھ کیسے بات کی جا رہی تھی؟ آپ دیکھیں پیچھے کی آیات آپ پڑھیں گے تو کیسے آیا تھا، ان اصحاب الجنت فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم. ایک وہ زبان ہے جس کا ایک بڑا سافٹر ٹون ہے، آپ تلاوت بھی سنیں اور پھر جب تلاوت کرنے والے پورے ایکسپریشن کے ساتھ مفہوم کو سمجھتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں، وامتاز الیوم ایوہ المجرمون، اس کے اندر ایک سختی ہے، ہارشنس ہے، اللہ کا اس کے اندر غضب بڑھک رہا ہے. ایک طرف ہو جاؤ، ممتازو کا مطلب ہوتا ہے گیٹ ٹو دا سائڈ، ایک طرف ہو جاؤ. امام ابن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ ایک طرف جنتیوں کو ایزی ایکسس دیا جا رہا ہوگا، جنت کی طرف آپ پروسیڈ کریں، اور ایسے میں ان سے کہا جائے گا، جیسے بعض لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ بڑا فرما بردار اور ایک بچہ ذرا نافرمان، اسے کہتے ہیں بیٹا کیا کھاؤ گے، کیا کھانا ہے تم نے، एक को देखा ऐसे बोला, एक ने नाराज किया हुआ तो अम्मा ने ऐसे बोला अपनी नाराजगी के इजहार के लिए। यही नाराजगी का इजहार, अल्लाह का गजब आपको यहां नजर आ रहा है। जन्नतियों को प्रोसीड करने के लिए कि वो जन्नत की तरफ आगे बढ़ें, इन मुजरमीन से कहा जाएगा गेट टू द साइड, गिव देम वे, लेट देम प्रोसीड। और इनके साथ जो सख्त हार्श टोन इस्तेमाल की जा रही है, इसी चीज को आगे जो है वो अगली आयत में मेंशन किया जा रहा है इंशाल्लाह, आयत 60 कल शुरू करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अहले जन्नत में शामिल फरमाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह हम गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को ओवरलुक कर दें। अल्लाह हमें इस रमज़ान में, इस तेज़ी से गुजरते हुए रमज़ान में अपनी बख्शिश कराने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाइए। अल्लाह तमाम माओं की आंखें उनकी औलाद की तरफ से ठंडी रखिए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली और शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम जितने भी यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं और जो सुन रही हैं, अल्लाह ताला सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह हमारे लिए इस मुश्किल वक्त में, इस फितने के दौर में, इन आजमाइशों के वक्त में दीन पर कायम रहना और अपनी औलादों को दीन पर कायम रह कर बना कर छोड़ कर जाने वाला बना दे। अल्लाह हमारे लिए इस सारे अमल को, मुसलमान बनने को और मौत से लेकर रोज़े महशर तक के मामले को आसान बनाए। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करे और अल्लाह हमसे हमारी मेहनतों को कबूल फरमा ले। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़ानी व इयाकुम बी आयाति व ज़िक्र अल हकीम। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته